इशिका और अभिमन्यु बात कर रहे थे। वे पार्थ के अचानक आने पर परेशान हो गए थे। ऊपर से पार्थ इशिका की प्रेगनेंसी के बारे में भी जानता था। पार्थ जिस धमकी भरे अंदाज में अभिमन्यु से बात करके गया था, उससे साफ था कि वो इस बात का फायदा जरूर उठाने वाला है। अभिमन्यु इशिका को पार्थ के इरादों के बारे में बता रहा था। इस बीच उसके पास मेंटल असाइलम से कॉल आया। वहां से उन्हें पता चला कि आयशा पागलखाने से भाग चुकी है। अभिमन्यु और इशिका गोवा आ गए थे और इसी के साथ उनकी जिंदगी की मुश्किलें भी फिर से शुरू हो चुकी थीं। आयशा के भागने की बात सुनकर अभिमन्यु ने इशिका से परेशान स्वर में कहा, सबसे पहले तो मैं हमारे विला की सिक्योरिटी टाइट करवा देता हूँ। तुम अकेले अब कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। इनफैक्ट जब तक आयशा पकड़ी नहीं जाती, तुम घर पर ही रहो तो सही रहेगा। या हम ऐसा करते हैं कि लंदन चले जाते हैं, वो वहां नहीं आएगी। अभिमन्यु इशिका के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। इशिका ने उसका हाथ पकड़ा और सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, रिलैक्स अभिमन्यु, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं कौन सा अकेले रहती हूँ, पहले से ही इस घर की सिक्योरिटी काफी टाइट है। वो यहाँ आसपास भी नहीं आ सकती है। और अगर मैं कहूँ कि वो यहाँ आ सकती है, इस घर का ही कोई मेंबर उसे बाहर निकालने की साजिश कर रहा है, तो फिर तुम क्या कहोगी, अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। इशिता उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से पूछा, मैं जानती हूँ कि नक्श हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आयशा को बाहर निकालने की गलती नहीं करेगा। उसने आयशा से शादी भी मुझे जलाने के लिए की थी। तुम जानते हो ना, पास्ट में हमारे रिश्ते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। हाँ जानता हूँ, और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। ये काम नक्श का नहीं बल्कि उर्वशी राजवंश का है। तुमने उनकी बातों की तरफ गौर नहीं किया होगा। जब बाहर पार्थ के आने पर बहस हो रही थी, तब उनके मुंह से आयशा का जिक्र हुआ था। वो मिस्टर सिंघानिया को भी आयशा को माफ करने के लिए फोर्स कर रही थी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था। उसने इशिका का हाथ दोनों हाथों से पकड़कर सख्ती से कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, मैं अपने तरीके से निपट लूंगा। लेकिन अभिमन्यु, इशिता ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने ना में सिर हिलाकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया था। अभिमन्यु ने अपनी इंटेंस वॉइस में कहा, अभी कुछ मत कहो इशिका, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। इशिता ने भी आगे बहस नहीं की। उसे अभिमन्यु की परवाह हो रही थी। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसे आराम की जरूरत थी। फिर भी एक के बाद एक नई मुसीबत उस पर आ रही थी। अभिमन्यु ने इशिका को कमरे में छोड़ दिया और उसे आराम करने की सख्त हिदायत देने के बाद बाहर आया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव सर्द थे। अभिमन्यु गुस्से में राजवंश फैमिली के मेन विला में जा रहा था। रात के वक्त उर्वशी, प्रशांत, नकुल और नक्श साथ बैठकर बातें कर रहे थे। नकुल ने गंभीर अंदाज में प्रशांत से पूछा, मॉम को इस बारे में आपको बता देना चाहिए था। अगर उनके कोई और बेटा है भी, तो उसे राजवंश फैमिली के शेयर्स की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने पता लगाया, उसके पास काफी एसेट्स हैं। देखा जाए तो इसमें हमारा फायदा हो सकता है, अचानक उर्वशी बोली, तो उन सबका ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। उर्वशी ने आगे बताया, अगर आपका बेटा हमारी साइड आ जाए तो हमारा पलड़ा भारी होगा। सारे शेयर्स को फिर से बराबर बांटा जाएगा। इसी बहाने हम बाकी शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर वो हमारा साथ देगा तो नक्श आराम से सीईओ बन सकता है। और वो मुझे सीईओ क्यों बनने देगा, नक्श ने उर्वशी को घूरते हुए पूछा। क्योंकि वो हमारे साइड होगा, वैसे भी उसके पास खुद का हॉस्पिटल है और वो वहां का ओनर है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक वो अपने काम से दूर रह पाएगा, उर्वशी ने बेपरवाही से जवाब दिया। उर्वशी जो कह रही थी, अगर वो सच हो जाता तो सच में सीईओ की पोजीशन नक्श के पास आने वाली थी। उसका प्लान सुनने के बाद प्रशांत ने कहा, प्लान तो काफी अच्छा है, और अगर सही से काम किया तो राजवंश एम्पायर की बागदौड़ फिर से हमारे हाथ आ जाएगी। पर प्रॉब्लम यह है कि वो लड़का हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। जब से आया है तब से इतनी बार बात करने की कोशिश कर ली, लेकिन एक बार भी बात करने के लिए हाँ नहीं की। अगर वो नहीं मान रहा है तो आप मॉम से बात कीजिए, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। पार्थ मॉम की बात नहीं टालेगा, नकुल बोला। अभी भी उन सबका ध्यान इस तरफ ही था कि कैसे अभिमन्यु को उसकी पोजीशन से हटाया जाए। जब वे आपस में बात कर रहे थे, उसी बीच अभिमन्यु ने एक झटके में जोर से दरवाजा खोला तो उनका ध्यान उस तरफ गया। अभिमन्यु की इस हरकत पर प्रशांत और नकुल उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। अभिमन्यु लंबे कदम भरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। अभिमन्यु के उनके पास आते ही प्रशांत ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, अगर तुम्हें बात करनी थी तो तरीके से भी आ सकते थे। कंपनी में सबसे बड़ी पोजीशन भले ही तुम्हारी हो, लेकिन रहोगे तो तुम हमसे छोटे ही। जाने दीजिए डैड, इसे तो हमेशा से ही आदत है हमें नीचे दिखाने की। अब बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, नकुल ने अभिमन्यु से पूछा। अभिमन्यु ने एक नजर उन सबके चेहरे की तरफ डाली और फिर उर्वशी को घूर के हुए कहा, आई वॉन्ट यू मिसेज राजवंश, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, वरना अगर मैं आपकी तरह उल्टी सीधी हरकत करने पर आ गया तो आप में से कोई भी शख्स इस घर में नहीं रह पाएगा। उर्वशी की इंसल्ट होने पर नक्श आगे आया और बोला, चाचू आप बड़े हो इस वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी मॉम भी आपसे उम्र में बड़ी है, आप उनकी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और सख्त आवाज में कहा, अगर तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है तो तुम भी उनसे इसी अंदाज में बात करोगे। खैर जाने दो, मैं यहाँ इनसे बात करने के लिए आया हूँ। नक्श को जवाब देने के बाद अभिमन्यु ने अपना रुख फिर से उर्वशी की तरफ किया और सख्त आवाज में कहा, अगर आपकी एक्स लाडली बहू ने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आई स्वेयर मिसेज राजवंश, आप जो यहाँ पर सब मिलकर नक्श को सीईओ बनाने की प्लानिंग कर रहे हो उस पर मैं ऐसा पानी डालूंगा कि नक्श को सीईओ की जगह कंपनी के अंदर सबसे छोटी जॉब से भी नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जो कहना है सीधे सीधे कहो, तुम क्या हमें यहाँ धमकाने आए हो? नकुल बीच में आते हुए गुस्से में बोला। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, अभिमन्यु ने बिना किसी डर के कहा। वहीं आयशा का जिक्र आने पर नक्श चौंक गया था। उसने अभिमन्यु से तुरंत पूछा, क्या आपने थोड़ी देर पहले आयशा का जिक्र किया? लेकिन इन सब में मॉम की क्या गलती? आई मीन वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है और इस वक्त वो पागलखाने में है। वो पागलखाने में है नहीं, थी, थोड़ी देर पहले ही मेरे पास कॉल आया था कि वो वहां से भाग चुकी है, अभिमन्यु ने नक्श को बताया। हाँ तो इसमें उर्वशी बीच में कहां से आ गई? प्रशांत ने पूछा। उर्वशी और आयशा का एक साथ जिक्र होने पर उर्वशी के चेहरे पर डर के मारे पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। जिस तरह से अभिमन्यु सीधे उस पर इल्जाम लगा रहा था उससे एक बात साफ थी कि अभिमन्यु इस बारे में जानता था कि वो आयशा से मिलने के लिए गई थी। उर्वशी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर अभिमन्यु ने सार्कास्टिकली कहा, इस सवाल का जवाब आपको मिसेज राजवंश देंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि वो इस बात को पहले से जानती है। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तुम इस तरह बेवजह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो अभिमन्यु, उर्वशी ने हड़बड़ाते हुए कहा। रियली? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। तो फिर आप आयशा से मिलने क्यों गई थी?
हालांकि अभिमन्यु अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, उसने ये काम पृथ्वी को सौंप रखा था, फिर भी उसने उर्वशी को पकड़ने के लिए हवा में तीर छोड़ा था जो सीधे निशाने पर जा लगा था। पूरी बात जानने के बाद नक्श ने गुस्से में उर्वशी की तरफ देखते हुए पूछा, मॉम चाचू क्या कह रहे हैं, ये झूठ है ना, आप आयशा से मिलने के लिए नहीं गई थी? उर्वशी अपनी सफाई में कुछ कह पाती उससे पहले अभिमन्यु ने फिर से कहा, मेरे पास सबूत है। उर्वशी पकड़ी जा चुकी थी, अब उसके सामने हार मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उर्वशी की आंखों में आंसू थे, उसने नक्श को अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मैं उर्वशी से मिलने गई थी, लेकिन सिर्फ उसका हालचाल पूछने के लिए गई थी। मेरा यकीन करो नक्श, मैं बस जानना चाहती थी कि वो कहीं ठीक तो नहीं हो रही, कल को वो वापस आ गई तो तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। झूठ मत बोलिए मॉम, मेरा उसके साथ डिवोर्स हो चुका है, फिर वो मेरी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? नक्श ने जवाब दिया। नक्श उसकी बात मान नहीं रहा था तो उर्वशी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुम मेरा यकीन करो अभिमन्यु, ठीक है हम लोगों की आपस में नहीं बनती, लेकिन इसमें आयशा बीच में कहीं नहीं आती है, भला उसके आने से किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बहाने बनाना बंद कीजिए मिसेज राजवंश, उसके आने का सीधा सीधा असर इशिका की लाइफ में पड़ेगा, कल को वो मालविका को बाहर निकालने की कोशिश करेगी और फिर मिसेज सिंघानिया की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप उसे बाहर निकालने में मदद कर रही हैं ताकि हमारी लाइफ में फिर से उसे लाकर इशिका की जिंदगी मुश्किल बना सके। शायद इसी वजह से आप बार बार मिस्टर सिंघानिया से आयशा को माफ करने के लिए कह रही थीं। अभिमन्यु ने उर्वशी का सारा प्लान खोल कर रख दिया था। उर्वशी की इस हरकत पर सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, अब तो नक्श तक उसका साथ नहीं दे रहा था। उर्वशी ने गहरी सांस ली और अपनी गलती मानते हुए कहा, हाँ मैं मानती हूँ मैं उससे मिलने गई थी, मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन यकीन करो मैंने उसे नहीं भगाया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप चाहती हैं कि हम आप पर यकीन करें? ऐसा नहीं होगा मिसेज राजवंश, मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ, आपने एक क्रिमिनल को पागलखाने से भागने में मदद की है, अब अपनी हरकतों की सफाई आप उन्हें ही दीजिएगा, अभिमन्यु बोला और उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाल लिया था। गलती भले ही उर्वशी की रही हो, लेकिन मामला अगर मीडिया तक जाता तो बदनामी नक्श और नकुल की ही होनी थी, वैसे ही उनके लिए टाइम बुरा चल रहा था, ऊपर से उर्वशी की इस हरकत ने उन्हें एक बार फिर से पीछे लाकर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ आयशा इस वक्त सिंघानिया मेंशन में मौजूद थी, वहां कैसे घुसना था वो अच्छे से जानती थी, वैसे भी आदर्श के मरने के बाद उस जगह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आयशा इस वक्त अपने कमरे में थी जिसे इशिका के हिसाब से सेट किया गया था, वहां पर राधिका और इशिका की एक बड़ी सी फोटो भी लगी हुई थी जिसे आयशा नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी।